وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارا نمبر 19. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جی، شروع کی آیات کو اگر ہم آخری آیت کے ساتھ جوڑ لیں تو بات بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی. پچھلے پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت اصول سکھایا ہمیں کہ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے. اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور نہیں صبر آتا تو یہ یاد رکھنا کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. زندگی میں انسان کو بعض دفعہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ ہی جاتا ہے کہ جن کے ساتھ اس کی فریکوینسی میچ نہیں ہوتی، کیمسٹری میچ نہیں ہوتی، طبیعتوں کا فرق ہوتا ہے. کوئی کسی کو دیکھ کر کوئی کڑوی بات کرتا ہی ضرور ہے، اور اسی طرح سے طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انسان ایک ساتھ نہیں رہ سکتا. تو تسلی دی گئی کہ صبر کر لو، کچھ مسئلوں کا حل تو بس صبر ہی ہوتا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے. یہ احساس بندے کو صبر کرنے میں بہت زیادہ معاون ہو جاتا ہے. اب اس پارے کے شروع میں اگر ہم دیکھیں تو ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے. یہ ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اللہ کے نبیوں کے کلام کو سن کر کہ عقل دنگ رہ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو بھی ذرا اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھ لو، اس دن کتنی حسرت ہوگی. آیت نمبر 27 سے لے کر اگلی چند آیات آیات تدبر بھی ہیں. ہر وہ شخص جو ہدایت کے سفر پہ چلنا شروع کرتا ہے لیکن اپنے کسی دوست، اپنے پیارے، کسی رشتہ دار یا کسی دنیاوی فائدے کی خاطر اس کو چھوڑ دے، اس دن اس کی حسرت کیا ہوگی کہ وہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا طریقہ اختیار کیا ہوتا، اور کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. شیطان تو واقعی انسان کو تباہ کرنے والا ہے. اگر ان ساری باتوں پہ غور کریں، ابھی ہم اپنی صحبت کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں. میں کن میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، میری دوستی کن سے ہے، مجھے کون لوگ اچھے لگتے ہیں. اور اس کا ایک چھوٹا سا کرائیٹیرین ہے، اپنے ساتھیوں یا دوستوں میں بیٹھ کر عموماً کیا کرتی ہوں یا کیا کرتا ہوں، یہ ہے معیار. ان کے پاس بیٹھ کر اچھے کام کرنے کو دل کرتا ہے یا خراب کام کرنے کو. یہ نہیں کہ بری دوستیوں کو چھوڑ دیں، بس برے دوستوں کو بھی اچھا بنا لیں. اور اگر وقتی طور پہ وہ اچھے نہیں بننے کے موڈ میں، آپ اپنے کام سے کام رکھیے، کچھ عرصے میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ مل جائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بعض دفعہ عورتیں شاپنگ کے لیے جاتی ہیں اور ہسبینڈ تھک چکے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بیگم میں اور آگے نہیں جاؤں گا، تو آپ کہتے ہیں اچھا اچھا بس تھوڑا سا. پھر اتنے میں آپ سامنے کو بڑی خوبصورت شرٹ دیکھتی ہیں اور آپ اس کو دیکھتی بھی بھول ہی جاتی ہیں کہ واپس جانا تھا. آپ اور آگے سے آگے جاتی ہیں. جب مصروفیت ذرا سی کم ہوئی تو خیال ہے خو میاں نے تو کہا تھا آگے نہیں جاؤں گا، اب گھبرا کے جاتے ہیں کہ دیکھو کدھر ہے، تو آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں. کیوں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے دیکھ لیا کہ آپ اس شرٹ کی خریداری میں سنجیدہ ہیں، آپ کو شوق لگ گیا ہے شاپنگ کا، اب آپ کر کے ہی جائیں گی، تو ہلکے ہلکے بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے. اسی طرح آج وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ دین کے راستے میں معاون نہیں بھی ہوتے، وہ ہماری طلب، ہماری تڑپ اور ہماری کمٹمنٹ دیکھ کر آہستہ آہستہ ہمارے پیچھے آ ہی جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کو بھی جنت کا شوق لگ جائے گا. اس اگلی ہی آیت میں رسول کی ایک شکایت کا تذکرہ ہے جو وہ اللہ کے ہاں لگائیں گے، اور وہ شکایت کیا ہوگی؟ کن نہ قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے اس قرآن کو پکڑ کر بھی چھوڑ دیا تھا. گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ رسول سے امید تھی شفاعت کی اور لگ شکایت گئی. یہ پکڑ کر چھوڑنا کیا ہوتا ہے کہ نام کو تو پکڑا تھا، پڑھنے کو تو پکڑا تھا، لیکن عمل میں چھوڑا ہوا تھا. یہ قرآن ان پر اپنا کوئی امپیکٹ نہیں دے رہا تھا، یہ قرآن ان کی زندگی نہیں بنا، मस्जिद में जाके पकड़ते थे, मदरसे में पकड़ते थे, फजर के बाद भी पकड़ते थे, उमरे में जाके पकड़ते थे, बहुत सारे कुरान मस्जिदों में रखवाते थे, छपवाते भी थे, डोनेशंस भी देते थे, लेकिन जब ये कुरान अमली ज़िंदगी में कुछ मुतालबा करता तो महजूरा। बस इससे ज़्यादा ना कहूँ, और आप ख़ुद सोचें तो मुझे लगता है कि ये बात समझ में आने की है। आज उम्मत मुस्लिमा का हाल कुछ इसी किस्म का दिखता है। अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको। इसके बाद कुछ आयतों के फ़र्क के बाद अम्बिया कराम के किस्से बयान किए गए, और आयत नंबर 43 जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज के माशरे की तस्वीर कशी करती हुई दिखती है। अरअईत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, क्या आपने देखा उस शख्स को जो अपनी ख्वाहिश को इलाह बना लेता है, क्या आप उसके वकील बन सकते हैं। ख्वाहिश नफ्स है वो माबूद जो इंसान को जलील कर देती है, और यही है जो अल्लाह के हर हुक्म को पीछे डालकर जैसा चाहो जियो का नारा दिलवाती है। ख्वाहिश को ही सामने रखें तो सारा दिन हम अपनी ख्वाहिशों की तो तकमील में लगे रहते हैं। खाना पीना सोना जागना पहनना ओढ़ना मिलना मिलाना शॉपिंग और इसी तरह की कुछ और चीज़ें। देखिए, जायज़ हदों में रहकर अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जी रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अल्लाह का कानून टूटे, जब अल्लाह के दीन का तकाजा हो और दूसरी तरफ ख्वाहिश हो, मसलन फजर के वक्त सोने की ख्वाहिश है और अल्लाह कहता उठो नमाज पढ़ो, अस्सलात तो खैर मिनन नौम, तो अगर सोते रह गए तो इलाह बना लिया ख्वाहिश को, तो सिर्फ छोटा सा एक टेस्ट अपना ले लेते हैं कि मेरी ख्वाहिश मेरा इलाह तो नहीं बन गई, मैं कितनी ख्वाहिशात को पूरा करती हूँ, मेरी ज़िंदगी में ख्वाहिश का वो मुकाम तो नहीं कि हज़ारों ख्वाहिश इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो इनको कंट्रोल करना है, और ये पूरा लाइफ स्टाइल है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की पेरेंटिंग में तरीका ही ख्वाहिशों को भरने वाला और उसको मनवाने वाला कि अगर छोटे से बच्चे से माँ उसकी ख्वाहिश पूछती है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को अब देखिए कि अल्लाह ताला बेअक्ल लोग कहते हैं। फिर उसके बाद रात दिन की कुछ चीज़ों को और कायनात में फैली हुई निशानियों को तस्करा करके आयत नंबर 52 जो इस पारे की दूसरी आयत तदब्बुर है, इस पर गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला कहते हैं फ़ला तुतील काफिरीन, काफिरों की इताअत ना कीजिए, वजाहे तुम भी जिहादन कबीरा, और इनके साथ जिहाद कीजिए बहुत बड़ा जिहाद। सवाल पैदा होता है कि यहाँ किस जिहाद की बात है। असलाफ ने इसकी तफसीर में भी ही की ज़मीर कुरान की तरफ की, इस कुरान को लेकर जिहाद करो। हकीकत है कि सोसाइटी में जिहाद उसी वक्त शुरू हो जाता है जब आपके हाथों में कुरान आता है। पहले तो अपना नफ्स ही नहीं मानता, सुस्ती पड़ी हुई आदत नहीं, सोने की आदत, कौन कुरान सीखने पे वक्त लगाए। खैर, जिहाद कीजिए, इसको जिहाद नफ्स कह लें आप, सेल्फ कंट्रोल करें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, कुछ कुर्बानियाँ दें। यहाँ से करते करते जब इंसान अपने मन को मना लेता है तो सोसाइटी प्रेशर डालती है, घर वाले डालते हैं, और इसी तरह से घर वालों को मनाते मनाते शहर वाले, सोसाइटी वाले, और पूरी दुनिया में इस वक्त देखिए एक जंग लगी हुई है कुरान के ख़िलाफ़। वो अहकामात जो सदियों से माने हुए थे, आज बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे उसके ऑपोजिट व्यूज़ पेश किए जाते हैं। आज मेरा आपका जिहाद यही है कि इस कुरान के असल पैगाम को, साफ सुथरे निखरे हुए पैगाम को आम कर दें। जिन स्क्रीनों से लोग आज लोगों को तसल्लियाँ देकर बड़े बड़े हराम काम हलाल करते हुए दिखे, या जहाँ बैठकर वो दीन का मजाक उड़ाएं, और जहाँ बैठकर वो कहें कि आज के दौर में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो वहाँ कुरान लेकर चलें। जब इंसान कुरान लेकर जाता है ना, तो उसको मुख्तलिफ महाजों पर काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ा महाज फ़िरकावारियत का है। आज हमारी उम्मत छोटे छोटे ग्रोहों में बट गई, जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोग कुरान नहीं पढ़ते। वो कहते पता नहीं किसका क्या मसलक है, किसकी क्या सोच है। फिर इसी तरह आप देखिए कि बेदीनी, आप कह लीजिए कि जिसमें सिर्फ अगर आप तर्जमा ही सुना दें लोगों को तो बात समझ आएगी, अनपढ़ लोग, मासियां, ड्राइवर, जिनको शायद कलमे का मतलब भी नहीं आता, इनको तो कुरान का तर्जमा सिखा दें तो इंशाल्लाह बात बन जाएगी। फिर इसी तरह एक बहुत पढ़े लिखे लोगों का गिरोह होता है, जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनमें अमूमन आप देखिए कि दुनिया की कैट रेस है, कैट रेस कह लें या रैट रेस कह लें, जो भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। हो सकता है उनके बच्चे ने अभी तक कुरान भी ना पढ़ा हो, लेकिन वो उसकी ग्रेजुएशन की पार्टी मनाने में मसरूफ़ है। तो ऐसे लोगों के साथ बहुत खूबसूरत तरीके से, सटल तरीके से दीन को पेश करना है। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि इस कुरान की खिदमत में आज हमारा नाम लिख ले। आपका मेरा यही स्लोगन होना चाहिए जो नूरुल कुरान का भी स्लोगन है कि इनलाइटन योर हार्ट्स विद द नूर ऑफ अल कुरान, कुरान से दिलों को रोशन करें, और इंशाल्लाह जब ये कुरान हाथों में आते हैं तो फिर कलम ही उठते हैं, फिर तलवारें उठाने की नौबत नहीं आती। आज मुसलमानों के खिलाफ जो तलवारें उठती हैं वो भी एक रिएक्शन है इस बात का कि आपने इतनी प्यारी किताब हमें क्यों नहीं दी। फिर इसके बाद कुछ मुख्तलिफ चीज़ों के तकाबुल के अंदर ससुराल का जिक्र है। देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि कुरान पाक में ससुराल का भी जिक्र है, क्योंकि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो शौहर हों या बीवियाँ, यानी मर्द हों या औरतें, उनको अपने इन लॉज के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहिए। ना तो ये बहुत दबाने वाला रिश्ता है और ना बहुत दबने वाला। अपनी आइडेंटिटी रखते हुए अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत भी कीजिए और अच्छे बेटे और अच्छी बेटी बनकर लोगों को दिखाइए। फिर इसके बाद अंबिया कराम का बेनियाज होना, कुछ तलब नहीं है। अल्लाह ने उनको दावत दी कि तुम अल्लाह पे ही तवक्कुल करो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और फिर आखिरी रुकू जिसमें इबादुर रहमान की सिफात है कि जिनको पढ़कर वाकई बेसाख्ता दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, कि अल्लाह तो हमें ऐसे ही लोगों में शामिल कर दे। ए टू जी अगर सारी सिफात पे नज़र डाल लीजिए और एक एक चीज़ चेक करते जाइए, ये मेरे में है अल्हम्दुलिल्लाह, आजजी से चलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहसों में नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह, रातें सजदों और क्याम में गुजारती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं करती हूँ कि जहन्नम के अजाब से अल्लाह बचा दे अल्हम्दुलिल्लाह, खर्च करने में बहुत ज़्यादा या बहुत कम तो नहीं करती, यानी फजूल खर्च तो नहीं हो या फिर बखील तो नहीं हो, शिर्क तो नहीं है मेरे अंदर, किसी भी तरह से किसी का कत्ल तो नहीं है, चाहे वो कत्ल नफ्स हो या किसी की इज्जत का कत्ल हो या वो सुसाइड हो, जिना की कोई फॉर्म तो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। ये सब अगर है या कुछ है कुछ नहीं, तो इसका जवाब भी सिखा दिया गया कि इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन, पिछले पे तौबा कीजिए, आज ईमान लाएं, कल के लिए इसलाह कर लें और अमल सालेह करते रहें, अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। फिर आगे का झूठ के गवाह तो नहीं बनते आप और मैं, कहीं झूठी चीज़ों की गवाहियाँ तो नहीं देते या झूठ का मुशाहिदा तो नहीं करते रहते, घंटों के अतबार से झूठी कहानियाँ और झूठी बातें और आगे से आगे बातों को बेसनद पेश करना। क्या मैं लग के पास से किरामन गुजर जाती हूँ, यानी लग महफिलों में बैठना, लगवियात में मशगूल होना क्या मेरे अंदर तो नहीं है? और क्या जब अल्लाह की आयतें मेरे सामने पढ़ी जाती हैं तो मैं गूंगी बहरी बन के सुनती हूँ या मुझे समझ आती हैं? और फिर खूबसूरत दुआ जो आज उम्मत मुस्लिमा को कसरत से मांगने की ज़रूरत है, अपनी नस्लों को और अपने स्पाउसेस को बचाने के लिए, कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन व जअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ए अल्लाह, हमारे शोहरों और बच्चों को या हमारी बीवियों और बच्चों को आंखों की ठंडक बना और वो मुत्तकियों के इमाम हो। क्या होती है आंखों की ठंडक? और तो बातें हैं, बस एक बात याद रख लें कि वो इतनी नेकियां करें कि उनको नेकियां करता देखकर खुशी से मरी आंखें गीली हों, और गीली चीज़ तो भी ठंडी ही होती है। अल्लाह ताला आज नस्लों की हिफाजत फरमा दे। बड़ा खूबसूरत एंड है सूरत का। आगे सूरत शोरा है जिसमें अम्बिया कराम के किस्से हैं। आयत 3 में अल्लाह के नबी की उस तड़प का जिक्र है जो आज मुझे आपको अपने अंदर लानी है। ला अल्लाह का बाख्य नफ्स का अल्लाह यकून मोमिनी, आप तो दूसरों के हाल पे कुड़ते ही रहते हैं। मैं और आप भी देखें क्या हम भी चलते कुड़ते हैं इस बात पे कि लोग ईमान क्यों नहीं ला रहे, लोग अमल क्यों नहीं कर रहे, लोग कुरान के मुताबिक क्यों नहीं हो रहे। तो याद रखिएगा, दूसरों की हिदायत की फ़िक्र ना होना इस बात की दलील है कि अपनी हिदायत पे भी पूरी नहीं है। अल्लाह ताला हमें अपनी भी और दूसरों की फ़िक्र लगा दे। इसके बाद अम्बिया कराम के किस्सों में बहुत सारे सबक हैं जिसका खुलासा यह, हर दौर में हक और बातिल की जंग लगी ही रही, ना मानने वाले नहीं माने और जिनको मानना था वो मान गए, फिरौन इतने मौजज़ात देखकर ना माना लेकिन जादूगर एक दफ़ा देखकर ही मान गए, यही दिलों की बात होती है। कुछ लोग सारी उम्र कुरान पढ़ते रहते हैं लेकिन अमल नहीं बदलता, इल्ला माशाल्लाह, वैक्स लगा होता है ना। कुरान तो अपनी जगह खूबसूरत है, पढ़ाने वाले भी ठीक बताते हैं, लेकिन अपने और कुरान के बीच में एक वैक्स लगा लेते हैं कुछ लोग कि नहीं बस पढ़ूंगी सही लेकिन अमल नहीं करूंगी और इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। लेकिन कुछ लोग पहली ही बारिश से भीग जाते हैं और उनका अमल रंग रूप सब बदल जाता है। अल्लाह ताला हमें उन्हीं लोगों में कर दे। फिर इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाते से बहुत खूबसूरत दुआएँ भी सिखाई गई, आज भी हम सबको पढ़नी चाहिए। आयत 82 से वल्लज़ियत मौयग़फिर अली ख़तियती यौमद्दीन, के अल्लाह मैं तमा करता हूँ तुझसे कि तू मेरी ख़ताएँ क़यामत के दिन माफ़ कर दे। रब्बी हबली हुक्मा वल हिकनी बिस्सालिहीन, अल्लाह मुझे हिकमत दे, हुक्म दे, अक्ल दे, समझ दे, मैं ज़िंदगी कैसे चलाऊँ, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूँ, मुझे हर काम को उतना उस जगह उस वक्त करने की तौफीक दे जिस वक्त उसको करना चाहिए, और मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे, और मेरे बाद मेरा जिक्र खैर जारी कर दे, और मुझे जन्नत नईम का वारिस बना दे, और मेरे बाप को बख्श दे कि वो भटके वो में से था। अब देखिए कितनी प्यारी आयतें, और इसके साथ ही अगली आयत इससे भी खूबसूरत, इल्ला मनतल्लाह बिकल्बिन सलीम। तो हकीकत है कि अल्लाह ताला मुझे आपको एक सलामत दिल के साथ देखना चाहते हैं। दुनिया से गुजरते हुए हम अपने दिल को हर चीज़ से बचा कर एक बड़े खूबसूरत गिफ्ट की तरह छुपा कर ले जाएं, क्योंकि हमने अपने रब को पेश करना है, ताकि टूटा हुआ ना हो, गंदा ना हो, पैकिंग ख़राब ना हो। इसके लिए थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल तो चाहिए होता है, लेकिन ये कोई काम नामुमकिन नहीं है। फिर इसके बाद बाकी अम्बिया कराम के भी किस्से आए, जिसमें से बहुत सारी व्रत की बातें हैं। सूरत के आखिर में शायरी की बात हुई। समझ लीजिएगा कि शायरी अपनी जगह अच्छी या बुरी नहीं होती। अच्छे मजमून वाली शायरी बहुत अच्छी है, पसंदीदा है। हसन बिन साबित जो थे वो ऐसी शायरी किया करते थे, अल्लाह के नबी खुश होते थे। लेकिन अगर गंदी बातें हैं, शिरकिया अशआर हैं, म्यूज़िक के साथ गाने सुनाए जा रहे हैं और उसके अंदर नामुमकिनात को मुमकिन किया जाए, तेरे लिए आसमान के तारे तोड़ लाऊं और बनाया है तुझको खुदा ने मेरे लिए, नऊज़ु बिल्लाह, शिर्क की बात है, अल्लाह ने तो हमें अपने लिए बनाया था, तो लिहाजा ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि झूठा शेर याद रखने से बेहतर है कि इंसान अपने पेट को पीप से भर ले। तो बहरहाल आज पूरा फिक्शन इसी पे चलता है, अल्लाह ताला हमें समझ दे। बाकी जायज़ मोहब्बत है, बीवी अपनी शौहर के लिए एक अच्छा सा गाना गाती है, खुद गुनगुना रही है, जिसमें कोई शिरकिया बात नहीं, कोई मुबालगा नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं, तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन अमूमन तो ऐसा नहीं होता। फिर इसके बाद आप देखिए कि सूरत नमल शुरू होती है, जिसके शुरू में ही एक एजेंडा दे दिया उन लोगों का जिनको अल्लाह ताला खुशखबरियाँ सुनाते हैं, जिनको मोमिन कहते हैं, जिनके लिए किताब वाकई खुदम व बुशरा बन जाती है। इसमें पहली चीज़ नमाज कायम करना, फिर ज़कात देना, फिर आखिरत पे यकीन रखना। आखिरत का यकीन ही असल में बंदे को सीधा रखता है। इसके बरक्स जो लोग आखिरत के यकीन से गाफिल हैं, फिर वो अंधे बहरों वाली ज़िंदगी बसर करते हैं। ऐसे लोगों को आप जितना मर्जी कह लें, सुन ले, वो बात को मान के नहीं देंगे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से से भी पता चलता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अल्लाह के दीन का काम करते ही रहना है। फिर इसके बाद हज़रत सुलेमान का किस्सा है, जिसमें चींटियों की बात है, और हकीकत है कि ये बहुत बड़ा एक फ़जल था सुलेमान पर, लेकिन इसके बावजूद कोई तकब्बुर नहीं, कोई बड़ाई नहीं, बल्कि बड़े रिलैक्स्ड फील करते हैं। आज भी हमें ऐसे ही होना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला हमें कोई नेमत दे, कोई खैर दे, तो हम उसको दूसरों के साथ शेयर करने वाले बने। और बार बार आप देखेंगे कि ये एक दुआ करते दिखते हैं, इनकी सोच झलकती है। आयत नंबर 19, रब्बी औज़ेनिया नशकुर नेमतक अल्लती अनअमत अलैया वअला वालिदैया वनाम अला सालिहन तर दुआ हुआ खिलनी बि रहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। क्या मेरे रब मुझे काबू में रख, मुझे इस चीज़ की तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझ पर और मेरे वालदैन पर की, और ऐसे अमल साले करवा ले जिनको तू पसंद करे। ये भी नोट करने के काबिल बात है कि नेकियां वो जिनको अल्लाह पसंद कर ले और अपनी रहमत से सालेह बंदों में शामिल कर ले। बहुत खूबसूरत दुआ है, अल्लाह करे कि हम भी ये मांगने वाले बने और हमारे हक़ में ये दुआएं कबूल भी हो जाएं। इसके बाद मलका सबा का किस्सा है, किस तरह हज़रत सुलेमान ने खूबसूरत तरीके से उनको दीन की दावत दी। आज भी यही हुक्म है, जो मुसलमान बड़े लेवल पे हैं वो बड़े लोगों को तबलीग करें, जो सियासत में है वो सियासतदानों तक इस्लाम पहुँचाएँ, जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स को, और जो हम जैसे आम लोग हैं वो आपस में ही बात करते रहें तो ठीक है। लेकिन हकीकत है कि जब लोग अपने इर्द गिर्द वालों को दीन का पैगाम नहीं देते, तो फिर उसमें खराबी पैदा होती है और उसका नुकसान भी फिर उनको होता है। फिर यह एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि मलका सबा के पास खुद खुद गया था और पैगाम दिया और वो मुसलमान हो गई। पीछे हमने देखा कि फिरौन के पास खुद मूसा गए लेकिन ईमान नहीं ला सका। हालांकि इधर औरत है उधर मर्द है, अमूमन हम कहते हैं मर्द ज़्यादा समझदार होते हैं, लेकिन याद रखिए कि जिस दिल में तासुब होगा ना, उसके पास वक्त का नबी भी आ जाए तो वो नहीं मानेगा, अबू जहल की तरह और अब्दुल्ला बिन उबई की तरह। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला में हक की तड़प लगा दे, किसी की भी ज़ुबान से सुने, चाहे वो कोई बहुत मशहूर शख्सियत है, कोई बहुत कॉमन मैन है, बात देखिए क्या कहता है। अगर उसकी बात से आपको फ़ायदा होता है तो वो नफ़े का है, और बड़े बड़ों की बातें सुनकर अगर आप हिदायत से दूर हो जाएं या आप मुतमईन होकर बैठ जाएं, तो उनसे ना सुनना बेहतर है उस बात को। फिर इसके बाद आखिर में अगर आप देखिए तो आखिरी आयत पारे की, जिसमें قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، ये बात सिखाकर अल्लाह ने सारे नेक लोगों को खिराज तहसीन दिया कि जब अल्लाह की तारीफें होती हैं जो अपने नेक बंदों को चुनता है, तो उस रब के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ लो। अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि वो हमें हकीकत में इस चीज़ का शौक़ लगा दे कि हम उसी के बन के जिए और जो कुछ करने का उसने हुक्म दिया उस पर अमल करें। पूरे पारे में जो बातें थी, एक एक बात पे अल्लाह ताला अमल करने वाला बना दे, हमारी ज़िंदगी कुरान के साथ जुड़े, कुरान को ग्रास रूट तक पहुँचाने वाले बन जाएं, अपनी ज़िंदगी को सुन्नतों के मुताबिक रखें, ख्वाहिशात पर नहीं चलना, नेक लोगों को दोस्त बनाना है, इबादुर रहमान की सारी सिफ़ात अपने अंदर लानी है, नाराज़ रिश्तेदारों को मनाना है, ज़मीन पे आजी से भी चलना है और माजी की गलतियों पे तौबा करके आइंदा के लिए अपनी इसलाह करनी है। इसके आयात तदब्बर सूरत अल फुरकान की आयत नंबर 27 और उससे अगली आयतें, वयौम यअदुज़्ज़ालिमु अला यदैहि यकूलु या लैतनी इत्तखज़्तु मअ अर्रसूलि सबीला। ज़ालिम इंसान अपना हाथ चबाएगा और कहेगा, काश मैंने रसूल का साथ दिया होता, हाय मेरी कमबख्ती, काश मैंने फलां शख्स को दोस्त न बनाया होता, इसके बहकाए में आकर मैंने वो नसीहत ना मानी जो मेरे पास आई थी। शैतान इंसान के हक में बड़ा ही बेवफा गुजरा। वक़ाल रसूल या रब्बी नक़ौमित तखज़ु हाज़ल कुरआन महजूरा। और रसूल कहेगा कि मेरे रब, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को पकड़ कर भी छोड़ा हुआ था, यानी इसका मजाक बनाया हुआ था। इन पे गौर करेंगे तो बहुत सारी गाइडलाइंस मिलेंगी। अल्लाह ताला हमें बुरी सोहबतों से भी बचाए और कुरान को उसका हक देने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।